अध्याय दो। हिंद महासागरीय नीतल उच्चावचन उद्भव एवं संरचना। इंडियन ओशन रिम ओरिजिन एंड रिलीफ। उच्चावचन। हिंद महासागर के जलमग्न नीतल का चित्र अत्यंत जटिल परंतु आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। यह जलमग्न पर्वतों, कटकों, दरारी संस्तरों जो प्रायः कटकों के लंबवत होती हैं तथा उनकी चौड़ाई को सीमित करती हैं, पठारों, मैदानों, समुद्री गर्तों व प्रायः सागर नीतल की ओर उन्नतोदर द्वीप से युक्त एक जलमग्न महाद्वीप जैसा प्रतीत होता है। महासागरीय नीतलों में श्रृंखलाबद्ध कटकों का बाहुल्य होता है। ज्वालामुखी निर्मित ये कटक हजारों किलोमीटर चौड़े, लाखों किलोमीटर लंबे तथा समीपवर्ती नीतलों से 2 से 3 किलोमीटर तक ऊंचे उठे होते हैं। संपूर्ण हिंद महासागर, मध्य हिंद महासागरीय कटक, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 2.5 किलोमीटर है, द्वारा लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित है। यह जलमग्न पर्वतीय श्रृंखला अरब प्रायद्वीप होकर लक्षद्वीप चागोस कटक होते हुए 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के समीप एम्स्टर्डम द्वीप से मिलकर एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार तथा कर्ग्यूलेन पठार कहलाती है। महासागरीय जल के ऊपर निकली इस पर्वतीय श्रृंखला की चोटियां लक्षद्वीप, मेनिकाय, अमीन द्वीप, मालदीव, चागोस, गिडो गार्सिया, रोड्रीगेज, एम्स्टर्डम व सेंट पॉल द्वीपों के नाम से जानी जाती हैं। इस कटक की खोज 2 दशक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकी वर्ष 1964 में हुई। इस कटक के पूर्वी हिंद महासागर में काकस केलिंग नाम का एक अत्यंत गहरा बेसिन स्थित है, जिसकी उत्तरी पूर्वी सीमा सुंडा जावा गर्त बनाती है। यहाँ सागरीय जल से ऊपर अत्यंत एकांत में काकस व क्रिसमस द्वीप दिखाई पड़ते हैं। काकस किलिंग बेसिन के मध्य से पूर्वी हिंद महासागरीय 90 डिग्री पूर्वी कटक गुजरता है। यह दक्षिण पूर्वी हिंद महासागरीय कटक से लेकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक विस्तृत है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा छिछला है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम तथा लक्षद्वीप, मालदीव व चागोस कटक से पश्चिम सोमाली व अरब बेसिन स्थित हैं, जिनके मध्य उत्तरी पश्चिमी दक्षिण पूर्वी दिशा में सुकोत्रा चागोस अथवा कार्लसबर्ग कटक विस्तृत है। सोमाली बेसिन अरब बेसिन की अपेक्षा अधिक गहरा है। यहाँ सर्वाधिक गहराई अमीरांत गर्क में पाई जाती है। सोमाली बेसिन से दक्षिण पूर्व को झुका हुआ चापाकार सेसेल्स मॉरिशस कटक पर सेसेल्स द्वीप समूह व मॉरिशस द्वीप स्थित हैं। मेडागास्कर के उत्तर पश्चिम, मेडागास्कर व अफ्रीका के मध्य कोमोरो द्वीप समूह स्थित है। दक्षिणी मेडागास्कर कटक, जो दक्षिण में चौड़ा होकर प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक के नाम से जाना जाता है, के पूर्व में मॉरिशस व कर्ग्यूलेन बेसिन हैं, जबकि इस कटक के पश्चिम व दक्षिण पश्चिम की ओर क्रमशः नेटाल व अगुलहास बेसिन पाए गए हैं। कटक के दोनों ओर स्थित ये बेसिन सुदूर दक्षिण में आकर अटलांटिक इंडियन अंटार्कटिक बेसिन में मिल जाते हैं, जो पूर्व की ओर कर्ग्यूलेन गास्वर्ग कटक से सीमित होते हुए पूर्वी इंडियन अंटार्कटिक बेसिन से संयुक्त हो जाता है। सुकोत्रा द्वीप के समीप तथा रोड्रीगेज द्वीप के दक्षिण पूर्वी दरारी संस्तरों का बाहुल्य है। इनकी चौड़ाई कुछ किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक हो सकती हैं। इन विशिष्ट आकृतियों के अतिरिक्त सागर नीतलों में दरारी संस्तरों तथा कटकों आदि के संबंध ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित आकृतियां भी हैं। मध्य हिंद महासागरीय कटक पर स्थित ज्वालामुखी पहाड़ी द्वीप रोड्रीगेज इसका उदाहरण है। सीमांत सागरों का उच्चावचन। अंडमान सागर। अंडमान बेसिन के उत्तरी एवं पूर्वी एक तिहाई भाग के अंतर्गत अंतः समुद्री इरावदी साल्विन डेल्टा तथा मरगुई प्लेटफॉर्म आते हैं, जो तट से क्रमशः 200 एवं 170 किलोमीटर चौड़े तथा 200 मीटर गहरे हैं। इन छिछले मग्न तटों से सागर तली उत्तर एवं दक्षिण में क्रमशः तीव्र ढाल बनाती हुई एक विशाल केंद्रीय बेसिन तथा दो छोटे बेसिनों में जा मिलती है। इनमें से प्रत्येक गर्द 2000 मीटर से अधिक गहरे हैं। केंद्रीय बेसिन के दक्षिणी सिरे पर कार निकोबार से 150 किलोमीटर पूर्व की ओर 4180 मीटर की सर्वाधिक ज्ञात गहराई पाई गई है। इस सागर की औसत गहराई 870 मीटर है। बैरेन एवं नारकोंडम द्वीपों को मिलाकर उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत चापाकार ज्वालामुखी द्वीप तथा सामुद्रिक टीले बेसिन को एक दूसरे से अलग करते हैं। अन्य सामुद्रिक टीले ज्वालामुखी चाप के पूर्व की ओर सागर तली में जुड़े हुए हैं। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी सागर नीतलीय स्थलाकृति एक चौड़ी यू आकृति के बेसिन सदृश है, जो दक्षिण की ओर खुली है। इसके मध्यवर्ती भाग में 2000 से 4000 मीटर की गहराई तक चारों ओर 2 मीटर प्रति मील की दर से लगभग समढाल प्रवणता पाई जाती है। इस आकृति से यह स्पष्ट है कि सागर नीतल बड़े लंबे समय से विवर्तनिक दृष्टि से स्थिर रहा है। यह मैदान खाड़ी के शीर्ष पर स्थित एक चौड़े डेल्टा के एक उत्थान तक विस्तृत है। महाद्वीपीय मग्नतट का गोल किनारा पश्चिम में 130 से 180 मीटर के मध्य तथा सबसे खड़ा ढाल लगभग 4.5 डिग्री है। दक्षिण में श्रीलंका के पास 45 डिग्री से अधिक महाद्वीपीय ढाल सबसे तीव्र ढाल ज्ञात ढाल है। अंतः समुद्री प्रपातीय खड्ड कैनियन। अंतः समुद्री आकृतियों में निकोबार सुमात्रा मुख्य भूमि के समीप उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत इंडोनेशिया सुंडागर्त है, जो खाड़ी में 4500 मीटर की गहराई से प्रवेश करता है। दूसरा मुख्य भौगर्भिक विन्यास गंगा प्रतापी खड्ड है, जो गंगा के डेल्टाई क्षेत्र के छिछले जल से प्रारंभ होकर महाद्वीपीय मग्न तट में उत्तर पूर्व से दक्षिण दिशा में आकर दांतेदार आकृति बनाती है। 700 फैदम की गहराई पर इसकी चौड़ाई 13 किलोमीटर है तथा यह चारों ओर मैदान के 300 से 400 फैदम की गहराई तक पहुंच जाती है। हैरिस स्टीवर्ट के अनुसार इसका कुछ भाग दरारी तथा कुछ निघर्षित प्रतीत होता है। गंगा प्रपाती खड्ड के तट किनारे की भुजाएं तीव्र ढाल लगभग 1:15 की हैं तथा नीतल लगभग समतल है। 1963 में भारत के आंध्र तट पर आंध्र महादेवन तथा कृष्णा प्रपाती खड्डों की खोज हुई। 700 फैदम पर इनकी परिच्छेदिका भी आकृति बनाती है तथा किनारों के ढाल 1:5 के हैं। महाद्वीपीय मग्न तट। बंगाल की खाड़ी की एक आंध्र तट की परिच्छेदिका से स्पष्ट ज्ञात होता है कि यहाँ मग्न तट 165 किलोमीटर चौड़ा है, जो दक्षिण में सकरा होता गया है। आंध्र मग्न तट की औसत चौड़ाई 40 किलोमीटर, औसत ढाल 0 डिग्री से 15 डिग्री तथा बाह्य किनारे औसत गहराई 100 फैदम आती है। अंतः समुद्री शंकु अथवा पंखे संपूर्ण विश्व के अंतः समुद्री प्रपाती खड्डों के सागरवर्तीय विस्तार से संबंधित आधुनिक सर्वेक्षणों से गहरे सागर में पंखों का, जिन्हें पातालीय शंकु कहते हैं, भी पता चला है। हीजेन एवं थॉर्प 1961-1965 ने हिंद महासागर के भू आकृतीय मानचित्र में गंगा एवं सिंध नदी के अंतः समुद्री प्रपाती खड्डों के डेल्टा से संबंधित ऐसे शंकुओं को दिखाया है। गंगा का अंतः समुद्री शंकु विश्व भर में सबसे बड़ा 2500 किलोमीटर लंबा है। यह श्रीलंका पाताली मैदान में 5000 मीटर की गहराई पर सुंडाबंड के नीचे एक संबंधे 500 के ढाल पर समाप्त होता है। मोटे तौर पर इस विशाल शंकु का क्षेत्रफल 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर तथा आयतन 5 मिलियन घन किलोमीटर आता है। यह हिमालय के लगभग 70% अफवाह तंत्र को प्रदर्शित करता है। लगभग 10% मलवा गंगा के बाढ़ के मैदान में तथा 20% सिंधु में चला जाता है। यदि हिमालय का अपरदन लगभग 20 मिलियन वर्ष पूर्व होना प्रारंभ हुआ, जिससे लगभग 25 घन किलोमीटर अघुलनशील अपरदित पदार्थ प्राप्त होता है, तो इस आधार पर ये आंकड़े आश्चर्यजनक नहीं हैं। घुलनशील पदार्थों को छोड़कर भारत तिब्बत हिमालय के अपरदित पदार्थों के योग का अनुमान 0.3 घन किलोमीटर प्रतिवर्ष या 6 सेंटीमीटर प्रति शताब्दी, लगभग 500,000 वर्ग किलोमीटर आता है। इस प्रकार गंगा शंकु पर औसत अवसादीकरण की दर प्रतिवर्ष 0.1 मिलीमीटर प्रतिवर्ष या 1 सेंटीमीटर प्रति शताब्दी होगा। अरब सागर। अरब बेसिन उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व उपनदी के कार्लसबर्ग कटक तथा हिंद महासागरीय कटक के उत्तर पश्चिम विस्तार द्वारा दो विशाल बेसिनों में विभाजित हो जाता है। ये बेसिन दो उपमहाद्वीपीय अंतः समुद्री पठारों द्वारा सीमित होते हैं। इनमें से एक दक्षिण स्थित सेसेल्स मॉरिशस कटक लगभग 15 डिग्री दक्षिण 65 डिग्री पूर्व से उत्तर पश्चिम में सेसेल्स एवं अमीरांत तक विस्तृत है, जबकि पूर्व स्थित पठार 73 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे चागोस द्वीपों से लेकर दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागरीय मग्न तट को स्पर्श करते हुए मालदीव व लक्षद्वीपों तक चला जाता है। यह पठार अपनी संपूर्ण लंबाई में 1800 मीटर से कम गहराई प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत कार्लसबर्ग कटक की औसत गहराई 1800 मीटर 1000 फैदम से 3600 मीटर 2000 फैदम के मध्य है। 3600 मीटर से अधिक गहराई मध्य महासागरीय कटक के केंद्र स्थित मध्यवर्ती दरारी घाटी में पाई गई है। यह दरार सुकोत्रा से के उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर अदन की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम स्थित पूर्वी अफ्रीकी दरार से मिल जाती है। इस प्रकार अरब सागर 3600 मीटर से अधिक गहराई वाले दो बेसिनों में विभाजित हो जाता है। उत्तर पूर्व में अरब बेसिन तथा दक्षिण पश्चिम में सोमाली बेसिन। सोमाली बेसिन दक्षिण स्थित मैस्करीन तथा मेडागास्कर बेसिनों से, जिनकी देहली गहराई स्किल डेप्थ 3600 मीटर से अधिक है, जुड़ जाता है। सोमाली बेसिन की औसत गहराई 4600 मीटर से अधिक आती है। गहराई मापक यंत्र द्वारा यहाँ 5300 मीटर की सर्वाधिक गहराई अंकित की गई है। अरब एवं सोमाली बेसिन के मध्य की देहली गहराई लगभग 3000 मीटर मापी गई है। भारत के दक्षिणी छोर पर महाद्वीपीय मग्नतट लगभग 120 किलोमीटर चौड़ा एवं 220 मीटर गहरा है। उत्तर में लगभग 11 डिग्री उत्तर के समीप मग्नतट संकरा होकर 56 किलोमीटर तक हो गया है। खंबात की खाड़ी के समीप इसकी चौड़ाई 352 किलोमीटर तथा गहराई 90 मीटर मिलती है। बाह्य मग्नतट अधिकतर बालू से ढका है, पर तट के समीप कहीं कहीं यह पंकयुक्त भी हो गया है। सुदूर उत्तर में कराची के समीप मग्नतट 185 किलोमीटर या थोड़ा अधिक चौड़ा रह गया है। इस क्षेत्र का मग्नतट प्रमुखतः पंक तथा बाह्य किनारे पर कुछ बालुका युक्त पाया जाता है। सिंधु नदी के अंतः समुद्र डेल्टाई भाग में मग्नतट एक अंतः समुद्री प्रपाती खड्ड द्वारा काट दिया गया है, जबकि कराची से पश्चिम यह एकाएक सकरा हो जाता है। तत्पश्चात पश्चिम की ओर बलूचिस्तान और दक्षिणी ईरान के मकरान तट के पास क्रमशः संकरा होकर 37 किलोमीटर रह गया है। यहाँ पर मग्नतट मुख्यतः पंक से आवृत है। ओमान की खाड़ी के शीर्ष पर मग्नतट चौड़ा एवं पंक आवृत है। ओमान बेसिन, जो मकरान तट के समानांतर एक गर्त के रूप में स्थित है तथा मुख्य अरब बेसिन से एक सकरे कटक द्वारा अलग होता है, की गहराई 1800 मीटर से अधिक है। यह कटक, जिसे मुरे कटक के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पश्चिम में कार्लसबर्ग कटक से मिल जाता है। पूरे अरब तट का मग्न तट संकरा है। यहाँ यह मुख्यतया स्थलजात या वायुजनित बालू से ढका है। लाल सागर के मुहाने पर अदन की खाड़ी के समीप का मग्न तट लगभग 37 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ इसे 183 मीटर से अधिक गहरा जलमार्ग आकर मिलता है। सोमाली तट पर केप गार्दाफुई से मोम्बासा तक अत्यधिक संकरा तट दरारी उत्पत्ति का संकेत देता है। फारस की खाड़ी, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है, फारस की खाड़ी की औसत गहराई 14 फैदम आंकी गई है। इसके मुहाने के पास अधिक गहराई 60 फैदम से अधिक पाई जाती है। खाड़ी के अंदर विभिन्न स्थानों पर कुछ अधिक गहराई 93 फैदम तक पाई जाती है। हार्मोज जलडमरू मध्य से 117 किलोमीटर अंदर सागर एक छिछले प्रदेश, जो एक सकरे गर्त द्वारा जुड़ा है, द्वारा पूर्वी एवं पश्चिमी दो भागों में बंट जाता है। सर्वाधिक गहराई फारस के तट की ओर एक छिछले क्षेत्र द्वारा सीमित कर दी गई है। खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में 20 फैदम से कम गहरा एक चौड़ा क्षेत्र पाया जाता है, जो खाड़ी के मुहाने की ओर सकरा होता गया है। लाल सागर, लाल सागर की सर्वाधिक चौड़ाई दक्षिण में 306 किलोमीटर है। दक्षिणी जल संधि से उत्तर स्थित अक्वाबा एवं स्वेज खाड़ियों के 2/3 भाग पर स्थित रास बेनास के समीप सागर केवल 145 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है। इससे दक्षिण के तट 50 मीटर से कम गहरे चौड़े तथा प्रवाल भित्ति युक्त मग्न तट वाले हैं। इसके बाद मग्न तट तीव्र ढाल बनाता हुआ 500 मीटर की गहराई तक पहुंच जाता है। यह एक मध्यवर्ती गहरे सकरे गर्त जिसकी अधिकतर गहराई 1500 से 2000 मीटर से अधिक है की बाह्य सीमा बनाता है। लाल सागर में सबसे गहरा बिंदु 2300 मीटर इसी मध्यवर्ती गर्त में अंकित किया गया है। रास बेनास से उत्तर मग्न तट अपेक्षाकृत अधिक संकरा हो गया है, अतः मध्यवर्ती गर्त चौड़ा एवं छिछला हो गया है। इसकी गहराई शायद ही कहीं 2000 मीटर से अधिक हो। उत्तरी छोर को सिनाई प्रायद्वीप दो भागों, पश्चिम में स्वेज की छिछली खाड़ी तथा पूर्व में गहरी सकरी उच्च देहली युक्त अक्वाबा की खाड़ी में विभाजित करता है। खाड़ी केवल 16 किलोमीटर चौड़ी है, पर इसके दरारी तट तीव्र ढाल बनाते हुए 1800 मीटर की गहराई तक पहुंच जाते हैं। अभी तक लाल सागर के उच्चावचन के बारे में ज्ञान अपर्याप्त है। हिंद महासागर का उद्भव, ओरिजिन ऑफ इंडियन ओशन। हिंद महासागर का उद्भव समझने के लिए महाद्वीपों एवं महासागरों, विभिन्न पर्वत प्रणालियों तथा ज्वालामुखी एवं भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के वितरण का ज्ञान अपरिहार्य है। भूखंडों एवं महासागरों के वितरण के लिए सर्वप्रथम चतुष्फलक परिकल्पना का प्रस्ताव रखा गया, परंतु बाद में इसका महत्व न रहा। टेलर ने 1908 में तथा वेगनर ने 1910 से 1915 एवं 1924 में यूरोप एवं एशिया के पर्वतों के उद्भव तथा अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका की तट रेखाओं की साम्यता के ज्ञान हेतु गंभीर प्रयत्न किए। 1915 में वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत के बाद भूगर्भ शास्त्रियों ने इस पर गंभीरता से विचार करना प्रारंभ किया। वेगनर की महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना। वेगनर के अनुसार उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के सभी महाद्वीप एक साथ मिले थे तथा पैंजिया के नाम से जाने जाते थे। कार्बोनिफेरस युग में इसमें दरार पड़ी तथा टूटकर यह अलग हो गया। उत्तरी महाद्वीप लॉरेशिया कहलाया तथा दक्षिणी गोंडवाना लैंड। इसी का भाग टेथिस सागर के रूप में बदल गया। मेसोजोइक कल्प में गोंडवाना लैंड का दक्षिण ध्रुव से प्रवाह एवं विभंजन हुआ, जिसके कारण भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गए। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। इसके कुछ समय बाद उत्तरी अमेरिका का पश्चिम को प्रवाह हुआ। वेगनर ने महाद्वीपों का ध्रुवों से दूर प्रवाह का कारण पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल शक्ति को माना। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमवर्ती प्रवाह का कारण महाद्वीपों एवं महासागरों पर सूर्य एवं चंद्र के विभेदीय ज्वारीय शक्ति को माना, जबकि इतनी लघु शक्ति महाद्वीपों जैसे विशाल भूखंडों के प्रवाह का कारण नहीं बन सकती। अपनी परिकल्पना में वेगनर ने सभी महाद्वीपों के मिलने से उत्पन्न स्वरूप पैंजिया को सिद्ध करने के लिए महाद्वीपों के तट पर समान भौगोलिक स्वरूप, तटों की एक रूपता, जलवायु जीवावशेषों एवं वनस्पतियों के अवशेषों में पर्याप्त समानता से संबंधित बहुत से आंकड़े एकत्रित किया। वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह के इस सिद्धांत का यद्यपि प्रवाह बल के कारण तथा कहीं ठीक तटीय एकरूपता के अभाव के कारण काफ़ी आलोचना हुई, पर कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया के बाद में इसके टूटने पर विभिन्न महाद्वीपों के हिमाच्छादित क्षेत्रों में समरूपता के कारण इस सिद्धांत की पूरी तरह अपेक्षा भी नहीं की जा सकी। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स में द्यूत्वाइत 1937 ने अटलांटिक के दोनों तटों के अवसादों, जीवावशेषों, जलवायु, भूसंचलन एवं आग्नेय क्रियाकलाप में पर्याप्त एकरूपता पाया है। बुलर्ड, एवरेट एवं स्मिथ 1965 ने संगणक कंप्यूटर की सहायता से 500 फैदम की गहराई की समुच्च रेखा के आधार पर दोनों अमेरिका एवं यूरोप तथा अफ्रीका के तटों को परिमाणात्मक आधार पर मिलाने का प्रयास किया है। स्मिथ एवं हलम 1970 ने दक्षिणी महाद्वीपों के संदर्भ में यही प्रयोग किया है। महाद्वीपीय प्रवाह के संबंध में पूरा चुंबकत्व से आधुनिक प्रमाण मिलते हैं। पूरा चुंबकत्व चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर विभिन्न महाद्वीपों के परिवर्तित ध्रुव वक्र खींचे गए हैं, पर उनमें परस्पर कोई संबंध नहीं पाया गया। यह तथ्य ही महाद्वीपीय प्रवाह का अति प्रमुख प्रमाण है। पूरा चुंबकत्व से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण कार्बोनिफेरस युग 350 मिलियन वर्ष से अब तक उत्तरी अमेरिका का 4000 किलोमीटर पश्चिमवर्ती तथा भारत का क्रिटेशियस समय 135 मिलियन वर्ष से 50 डिग्री अक्षांश से उत्तरवर्ती प्रवाह हुआ है। बहुत से समुद्र विज्ञानवेत्ताओं ने प्रमाण सहित अपना विश्वास प्रकट किया है कि हिंद महासागर के बहुत से कटक पूर्वी अफ्रीका, अरब प्रायद्वीप व भारतीय उपमहाद्वीप के संलग्न भाग रहे होंगे। उदाहरण स्वरूप अंडमान, भारत व बर्मा की पर्वत श्रृंखलाएं नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों की ही भाग हैं। कुछ रूसी भूगर्भ समुद्र विज्ञानवेत्ताओं का मानना है कि भारत व मेडागास्कर कभी एक स्थलीय पुल ल्यूमेरिया द्वारा संबंधित रहे होंगे। ल्यूमेरिया ल्यूरिया ही आज का सेशेल्स द्वीप समूह है। उनका विश्वास है कि मनुष्य के पृथ्वी पर जन्म लेने के बहुत पहले से ही लम्यूरिया डूबना प्रारंभ हो चुका था। सागर नितलीय विस्तरण सी फ्लोर स्प्रेडिंग सेस्मिक तकनीकों से ज्ञात हुआ है कि समुद्रीय नीतल की पपड़ी के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ मात्र 6-7 किलोमीटर मोटाई में स्थित हैं, जबकि महाद्वीपों के नीचे इनकी मोटाई 35 किलोमीटर या इससे भी अधिक है। अनुप्रस्थ तरंगों सेकेंडरी वेव्स की अपेक्षाकृत तीव्र गति से सागर नितलीय प्रावार के निर्माण में अधिक घनत्व के पदार्थों की बहुलता दृष्टिगोचर होती है। हेज एवं डीज महोदय 1961 ने विभिन्न भूकंपीय यंत्रों, मैग्नोमीटर व डेप्थ साउंडिंग आदि प्रक्रियाओं के निष्कर्षों के आधार पर सागर नितलीय पपड़ी के पदार्थों के निर्माण हेतु प्रावार के द्रवण तथा इनके पुनः ठोस होकर समुद्र नीतल पर क्षैतिजीय विस्तृत होने से बताया। इसी आधार पर उन्होंने महासागरीय कटकों के विस्तारण की विचारधारा प्रस्तुत की, जो अंततोगत्वा महासागरीय नीतलों के विस्तरण में मानी गई, जिसके परिणाम स्वरूप इन नीतलों में विभिन्न दरारों व भ्रंशों की उपस्थिति बताई। इसके अंतर्गत संवहनीय तरंगें ऊपर को उठती हैं, विशाल मात्रा में ऊष्मा का निष्कासन होता है, भूकंप आते हैं तथा पपड़ी भ्रंशित हो जाती है। यदि महासागरीय नितलों के विस्तरण की विचारधारा सही है तो महासागरीय नितल विशाल संवहनीय पेटी का कार्य करते हैं, जिसमें समुद्री कटक, पर्वतों, द्वीपों, यहाँ तक कि महाद्वीपों सहित गर्तों की ओर संचलित होते हैं। अंतः समुद्री ज्वालामुखी समुद्री कटकों के समीप उत्पन्न होते हैं, जो कि नवीन समुद्री पपड़ी के निर्माण का क्षेत्र होता है। विस्तरण की प्रक्रिया में भ्रंशों व दरार घाटियों का निर्माण मध्यवर्ती कटकों के लगभग लंबवत व समांतर होता है। चुंबकीय अविक्षणों के परस्पर विरोधी परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर हिंद महासागर में सागर नितलीय दरारों का पूर्ण विकास दृष्टिगोचर होता है। हेज एवं डीज महोदय ने सागर नितलीय विस्तरण की परिकल्पना दो प्रमुख तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की। पहला, सागर नितल पर कटकों के समीप चुंबकीय असंगति का प्रतिरूप, एवं दूसरा, महाद्वीपों की तुलना में महासागरीय नितल का अपेक्षाकृत अधिक नवीन आयु का होना। पहला, विस्तार से चुंबकीय असंगति। मध्य महासागरीय कटकों पर चुंबकीय सर्वेक्षण के दौरान यह प्रतिरूप नियमित रूप से पाया गया कि कटकों के शीर्ष पर चुंबकीय उच्च असंगति एवं उसके दोनों ओर उच्च एवं निम्न चुंबकीय असंगति की श्रृंखला पाई गई। इस प्रकार कटकों के समानांतर हजारों किलोमीटर तक रेखीय प्रतिरूप के स्वरूप में घनात्मक एवं ऋणात्मक चुंबकीय असंगति पाई जाती है। कटकों में यदि कहीं क्षैतिज विस्थापन होता है तो चुंबकीय असंगति स्वमेव विस्थापित हो जाती है। ऐसा माना गया है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यावर्तित होता रहता है तथा कटकों को सामान्य एवं उत्क्रम रूप में चुंबकित करता है। समयानुसार मध्य महासागरीय कटकों पर डाइकों के प्रारंभ होने की श्रृंखला उत्पन्न हो जाती है। मुख्य कटक के दोनों ओर समान प्रतिरूप होने से पता चलता है कि मुख्य कटक के मध्य से उष्ण मैग्मा निकलकर इसे दोनों ओर विस्थापित कर देता है। तत्पश्चात पुनः मध्य भाग से मैग्मा निकलने लगता है। कटकों का मध्य भाग सबसे आधुनिक होता है। इस प्रकार का चुंबकीय प्रतिरूप हिंद महासागर के अतिरिक्त कैलिफोर्निया के पश्चिम, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागरों में भी पाया जाता है। दूसरा, सागर नितलों की आयु। रेडियो एक्टिव क्रिया के द्वारा महाद्वीपों की आयु 3700 मिलियन वर्ष से अधिक निर्धारित की गई है। सागर नितलों की आयु 135 से 230 मिलियन वर्ष मेसोजोइक से अधिक पुरानी नहीं मानी गई है। इसी से स्पष्ट है सागर नितल नवीन कल्प में ही बने हैं। इसकी व्याख्या हेतु ऐसा माना गया है कि मध्य महासागरीय कटकों पर संवहनीय धाराओं का ऊपर उठकर क्षैतिज विस्तार हो जाता है, जिससे आधुनिक सागर नितलों की रचना हुई है। महाद्वीपीय प्रवाह हेतु बल के लिए संवहनीय धाराओं का कटकों के शीर्ष पर ऊपर उठना तथा गर्तों में क्षय होने की विचारधारा सर्वप्रथम आर्थर होम्स द्वारा प्रस्तावित की गई, जिसे पर्याप्त सम्मान मिला है। प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक्स। महाद्वीपीय प्रवाह तथा सागर नितलीय विस्तरण सिद्धांतों की सफलता के उपरांत पृथ्वी के धरातलीय स्वरूपों की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए 1960 के दशक के मध्य में प्लेट विवर्तनिक, प्लेट टेक्टोनिक्स और न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक्स का प्रस्ताव सामने आया। इस संकल्पना के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत में कुछ विशाल ठोस प्लेटों की अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप विवर्तनिक एवं भूकंपी क्रिया स्पष्ट होती है। इन प्लेटों की सीमा विश्व की भूकंपी पेटियां होती हैं। प्लेटों के अंतर्गत महाद्वीप अथवा महासागरीय धरातल हो सकते हैं। यह तथ्य कि धरातल पर व्यय होने वाले यांत्रिक बल का अधिकांश भाग एक अत्यंत सक्रिय पर्वतन पेटी ऑर्गेनिक बेल्ट में व्यय होता है, इस संकल्पना को और अधिक प्रभावी बनाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप इन सक्रिय पेटियों में तीव्र भूकंपी क्रिया के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण विकृतियां डिफॉर्मेशंस आ जाती हैं। इस प्रकार भूकंपी पेटियां ठोस प्लेटों के बीच अंतरक्रिया के प्रखंड होते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह एवं सागर नितलीय विस्तरण संकल्पनाओं से यह स्पष्ट है कि विगत करोड़ों वर्षों में हजारों किलोमीटर के इस विस्थापन से प्लेटों के आंतरिक भागों में कोई विकृति नहीं आई है। अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। ए, प्लेटों के वितरण का महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से कोई संबंध नहीं है। प्लेटों की सीमाएं जब महाद्वीपों से गुजरती हैं, भूकंपनीयता विसरित डिफ्यूज हो जाती हैं। प्लेटों की अपेक्षित गतिशीलता मापी जा सकती है। प्लेटों का उद्भव कटकों पर तथा व्यय क्षय गर्तों में होता है। ये भूकंपी प्रखंड भी होते हैं। कटकों पर हल्के तथा कम गहराई के भूकंप आते हैं, जबकि गर्तों में मध्यम एवं अधिक गहराई में नाभि वाले भूकंप आते हैं। पृथ्वी की पपड़ी लिथोस्फीयर के गर्तों की ओर झुके हुए विलीन होने वाले भाग को बोनीओफ प्रखंड कहते हैं। सामान्यतया इस प्रखंड के झुकाव का कोण 20 डिग्री से 45 डिग्री तक होता है। कहीं कहीं यह ऊर्ध्वाधर भी होता है। बोनीओफ प्रखंड का झुका हुआ अवतल भाग महाद्वीपवर्ती भाग की ओर होता है, जैसे सुमात्रा, जावा, मेडागास्कर, जापान इत्यादि। भूकंपों की उत्पत्ति भी बोनीओफ कटिबंध में होती है। हल्के भूकंपों 0 से 70 किलोमीटर गहरे का उद्भव बोनीओफ प्रखंड के ऊपरी भाग में, मध्यम भूकंप 700 से 300 किलोमीटर गहरे प्रखंड के केंद्रीय भाग में तथा तीव्र भूकंप 300 से 700 किलोमीटर गहरे बोनीओफ प्रखंड के निचले भाग में उत्पन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां तीव्र भूकंप नहीं आते, बोनीओफ प्रखंड उस गहराई तक नहीं मिलता अथवा पिघलकर समीपवर्ती मैग्मा में मिलकर एक हो जाता है। साधारणतया ये भूकंप संपीड़ित प्रकार के होते हैं, जिनकी नतिलंब सरपण गति अत्यंत कम होती है। मध्य महासागरीय कटकों पर भूकंप हल्के एवं सामान्य प्रकार के होते हैं, जबकि इनके विस्थापित भाग में ये भूकंप नतिलंब सरपण गति वाले होते हैं। विस्थापित भाग से दूर रूपांतरित भ्रंश अभूकंपी, जहां भूकंप नहीं आते होते हैं। जब कटक टूटते हैं एवं विस्थापित होते हैं, एक विशेष प्रकार का भ्रंश जिसे रूपांतरण भ्रंश ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहते हैं, उत्पन्न हो जाता है तथा एक विशाल दरार विकसित हो जाती है। इस विशाल दरार में टूटे हुए कटकों के मध्य भूकंप का सक्रिय कटिबंध स्थित होता है, शेष भाग अनुकंपी रह जाता है। सागरीय नीतलों में दरारी कटिबंधों, कटकों आदि से संबंधित ज्वालामुखी क्रियाएं छिछले समुद्रों में भ्रंशों के रूप में 20 से 30 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती हैं। गर्त के क्षेत्रों में इनकी उत्पत्ति 700 किलोमीटर की गहराई से भी होती है, लेकिन इनका अभिकेंद्र स्थलवर्ती ढाल पर 45 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। इन मध्यवर्ती कटकों के नीचे ताप के तीव्र प्रवाह का आभास मिलता है। गर्तों के समानांतर स्थित द्वीप श्रृंखलाओं में भी ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण मिलते हैं, पर उनसे उद्गरित पदार्थों की रासायनिक एवं भौतिक प्रकृति कटक के शीर्षों पर स्थित पदार्थों से भिन्न होती हैं। ज्वालामुखी क्रिया अधिकतर द्वीप श्रृंखलाओं में सीमित होती है, क्योंकि प्रवार मेंटल का पिघला हुआ पदार्थ इन्हीं श्रृंखलाओं के नीचे अवस्थित हो जाता है, न कि महाद्वीपीय प्रवार में सम्मिलित होता है। यही कालांतर में ज्वालामुखी क्रिया के लिए उत्तरदायी बन जाता है। द्वीप एवं कटकों से मैग्मा बनकर निस्सरित होने पर इनमें कई प्रकार के रासायनिक व भौतिक परिवर्तन होते हैं, जिससे यह महाद्वीपीय प्रवार के बेसाल्ट से भिन्न प्रकृति का होता है। अर्थात सागर नीतलों में जो बेसाल्ट वह प्रवार वाला होता है पाया जाता है, वह कटकों व द्वीप श्रृंखलाओं पर निस्सरित बेसाल्ट मिश्रित संरचना से भिन्न होता है। सागर नीतली बेसाल्ट स्थल पर उपलब्ध बेसाल्ट के समतुल्य होता है। ल पीसो 1968 ने संचलन को स्पष्ट करने के लिए 6 बड़ी एवं 6 छोटी प्लेटों को दर्शाया है। 6 बड़ी प्लेटें, पहला प्रशांत, दूसरा दोनों अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरेशिया, पांचवा अंटार्कटिका, छठा भारत एवं ऑस्ट्रेलिया। 6 छोटी प्लेटें, पहला नाजिया, दूसरा काकस, तीसरा कैरिबिया, चौथा सोमाली, पांचवा अरब तथा छठा फिलीपाइन हैं। कुछ अन्य छोटी प्लेटें भी इनमें सम्मिलित की गई हैं। इसका संचलन ठोस व कठोर पदार्थों की तरह होता है, जिसमें सागरी पपड़ी की संपूर्ण परत खिसकती है। पपड़ी के लिए पदार्थ द्रवित प्रवार से प्राप्त होता है। समुद्री गर्तों में उनका विनष्टीकरण तथा कुछ पदार्थों का कटक अथवा पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में एकत्रीकरण हो जाता है। इन प्लेटों की सीमा कटक या गर्तों द्वारा बनती है, जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे विलीन होती है, वहां गर्तों की स्थिति पाई जाती है। कुछ प्लेटों की महाद्वीपीय सीमाओं पर गर्त व भूकंपीय क्रियाएं नहीं पाई जाती। यह स्थिति प्लेटों के साथ संपूर्ण महाद्वीपीय भूखंड के संचलन की परिचायक होती है। समुद्री पपड़ी के महाद्वीपीय सीमाओं पर विलीन होने की क्रिया में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। यदि विलीन होती हुई समुद्री पपड़ी में कोई महाद्वीपीय भूखंड भी हो, तो महाद्वीपीय भूखंड व समुद्री पपड़ी में स्थित महाद्वीपीय भूखंड अवश्य टकराएंगे। ऐसी स्थिति में विलीनीकरण की क्रिया या तो रुक जाएगी अथवा दिशा ही परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि अपेक्षाकृत कम घनत्व का समुद्री पपड़ी में स्थित भूखंड महाद्वीपीय भूखंड के नीचे विलीन नहीं हो सकता। इसका स्पष्ट उदाहरण भारत का अत्यंत प्राचीन काल में एशिया की दक्षिणी सीमा से टकराव है। पैली मैग्नेटिक कार्यों से ज्ञात हुआ है कि भारत पिछले 10 करोड़ वर्षों से उत्तर को संचलित हुआ है। यदि यह कार्लसबर्ग कटक, जो हिंद महासागर में भारत व अफ्रीका के मध्य स्थित है, के उत्तरवर्ती व पूर्ववर्ती विस्तृत होने वाली प्लेट से संलग्न है, तो यह संचलन आज भी जारी है। यह संचलन ही हिमालय की नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियों तथा उसके दक्षिण स्थित गर्त में अवसादों से आपूर्ति के लिए उत्तरदायी हो सकता है, तथा यही हिमालय में आने वाले भूकंपों का कारण भी हो सकता है। हिंद महासागर से संबंध लाल सागर तथा अदन की खाड़ी, जिसकी तलहटी पूर्ण रूप से महासागरीय प्रतीत होती है, का विस्तरण 2 करोड़ वर्ष पूर्व मायोसीन युग में प्रारंभ हुआ। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह पेटी एक भ्रूण महासागर एम्ब्रो ओशन का परिचायक है। भौगर्भिक अध्ययनों तथा अफ्रीका के अफार प्रदेश में किए गए अन्वेषणों से ज्ञात हुआ है कि अरब तथा अफ्रीका का यह क्षेत्र एक दूसरे से संलग्न रहा होगा। कहीं कहीं एक के ऊपर दूसरे की स्थिति भी रही होगी। इसी संदर्भ में ज्ञात हुआ है कि जॉर्डन दरार घाटी के पूर्वी क्षेत्र का लगभग 100 किलोमीटर उत्तर की ओर संचलन हुआ। साथ ही अफ्रीका की महान दरार घाटी में भी लगभग 63 किलोमीटर का विस्तरण हुआ। एक छोटी प्लेट के रूप में अरब प्लेट स्थित है, जिसकी उत्तरी सीमा पांट्स, टारस तथा एल्ब्रूज आदि पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। संभवतः इसी प्रकार संपूर्ण भौगर्भिक कालक्रम में पृथ्वी तल पर स्थित महाद्वीप टूटे हैं, प्रवाहित हुए हैं और जुड़े हैं। दरारी प्रखंडों की उत्पत्ति प्लेटों के एक दूसरे के विपरीत दिशा में संचरण के कारण अथवा एक ही दिशा में संचलन पर संचलन गति में भिन्नता के कारण होती है। दरारी प्रखंड कमजोर क्षेत्र होने से भीषण भूकंपीय प्रक्रिया को जन्म देते हैं। जहां तक प्लेटों की संचलन दिशा का संबंध है, पैसिफिक प्लेट अपनी दक्षिण पूर्व में स्थित सीमांत कटक से पश्चिम पश्चिमोत्तर की ओर, इंडियन प्लेट उत्तर की ओर अमेरिकन पश्चिम की ओर तथा यूरेशियन दक्षिण पूर्व की ओर संचलित हुई हैं। संचलन हेतु बल महासागरीय कटक के फलकों के विस्तारण, जो कि हेस महोदय के अनुसार 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष प्रति कटक है, में निहित है। अफ्रीका तथा अंटार्कटिक प्लेटें सामान्यतया स्थिर मानी गई हैं। पैसिफिक प्लेट के कारण एशिया के पूर्वी तट पर स्थित द्वीप श्रृंखलाएं अमेरिकन प्लेट के संचलन के परिणाम स्वरूप राकीज तथा एंडीज पर्वत श्रृंखला इंडियन प्लेट के संचलन द्वारा हिंदू कुश, हिमालय श्रृंखला, सुमात्रा जावा द्वीप समूह तथा सुंडागर्त तथा यूरेशियन प्लेट के संचलन के कारण आल्पस, कार्पेथियन आदि पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण संभव हुआ। इसी प्रकार समुद्री नितलों का विस्तरण तथा प्लेट टेक्टोनिक्स विचारधाराएं समुद्री नितलों के इतिहास व विकास से संबंधित बहुत सी ऐसी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं, जिनका उत्तर वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह के सिद्धांत से नहीं मिलता। यद्यपि प्लेट विवर्तनिक संकल्पना कैनोजोइक एवं मेसोजोइक समयों की स्थिति को ठीक स्पष्ट करती है, इससे पूरा कैम्ब्रियन समय की स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता। वैसे इस समय का विस्तार पूरा कैम्ब्रियन स्थिति तक के लिए भी किया जा रहा है। हिंद महासागर की संरचना। भूगर्भवेत्ताओं का विश्वास है कि हिंद महासागर के नीचे अवस्थित जलमग्न महाद्वीप गोंडवानालैंड के विशाल दक्षिणी महाद्वीप जो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका व ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर पैंजिया के नाम से बना जाना जाता है, के अलग होने से बना है। गोंडवानालैंड लाखों वर्षों में धीरे धीरे टूटा, अर्थात हिंद महासागर की तलहटी का कोई भी भाग 20 करोड़ वर्ष से पुराना नहीं है, जिसे भूगर्भिक कालक्रम के संदर्भ में अतीनवीन कहा जा सकता है। सीमांतीय क्षेत्रों के पूरा भौगोलिक इतिहास से ज्ञात होता है कि पैलियोजोइक समय के प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के दक्षिण एक अभिनतीय गर्त विकसित हुआ तथा परमियन युग में पश्चिमी सीमांत पर एक इसी प्रकार की अभिनति मालगस अभिनति खुल गई। परमोकार्बोनिफेरस हिमयुग में सभी महाद्वीपीय इकाइयों की स्थिति प्रगाढ़ सन्निधि में थी। अब तक इन महाद्वीपों में वास्तविक संबंध स्पष्ट करने वाले पूरा चुंबकीय आंकड़े पर्याप्त नहीं है, पर इनमें कोई संदेह नहीं है कि परमियन युग में विशाल पैमाने पर महाद्वीपों के टूटकर विलग होने का संकेत मिलता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पूर्व को, अंटार्कटिका दक्षिण को एवं भारत उत्तर को संचालित हुआ। विस्तरण की प्रक्रिया की प्रकृति अभी भी बहुत विवादास्पद है। यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि इसका कारण महाद्वीपीय विस्तार के साथ प्रवार का विस्तरण है अथवा महाद्वीपीय वहन ड्रिफ्टिंग। इतना निश्चित है कि यह दक्षिणवर्ती मरोड़ का परिणाम है। इस प्रकार स्थिर ध्रुव एवं महाद्वीपों को स्थापित करने वाला कोई भी सिद्धांत गोंडवानालैंड के परमियम हिमानीकरण अथवा संस्तरीकरण से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ होने के कारण धराशायी हो जाता है। हिंद महासागर की तलहटी के संदर्भ में भौगर्भिक आंकड़ों पर आधारित अनुमान भूभौतिकी अध्ययनों द्वारा सत्य पाए गए हैं। मध्य अटलांटिक कटक के समस्वरूप के विपरीत हिंद महासागरीय कटक दो भिन्न पपड़ी प्रदेशों को अलग करता है। मध्य हिंद महासागरीय कटक के पश्चिम क्रेटानी प्रदेश में समान विखंडित महाद्वीपीय टुकड़ों के भूखंड पाए जाते हैं, जो मध्य महासागरीय पठारों के रूप में अर्धनिमज्जित सब्सिडेंस हो गए हैं तथा प्री कैम्ब्रियन के अंत अथवा कैम्ब्रियन के प्रारंभ के ग्रेनाइट निर्मित जैसे सेसेल्स हैं या निमज्जित प्रवाल वलय के प्रमाण हैं। विखंडित महाद्वीपीय प्रकार के टुकड़ों के मध्य महासागरीय प्रकार की पपड़ी पाई जाती है। अन्य महासागरों के समान महासागरीय कटक नवविकसित महासागरीय पपड़ी की पेटी प्रतीत होता है। इससे निकाले गए बेसाल्ट के टुकड़े काफी नवीन उद्भव के हैं तथा विशिष्ट रूप से महासागरीय प्रतीत होते हैं। हिंद महासागर के बाह्य छोरों पर स्थित बहुत से अन्य द्वीप भी महाद्वीपीय भूखंड से संबंधित बताए जाते हैं। मेडागास्कर व अफ्रीका के बीच के कोमोरो द्वीप, अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित पेम्बा व उनगुजा जंजीबार, सोमालिया के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित सुकोत्रा, लाल सागर व फारस की खाड़ी के द्वीप, बर्मा के पश्चिमी तट पर स्थित मरगुई तथा सुमात्रा के दक्षिण पश्चिम का मॉन्टेवी द्वीप श्रृंखला बहुत पहले धसाव के कारण अथवा पोस्ट ग्लेशियल समय में महासागरों के जलस्तर में वृद्धि के कारण मुख्य भूमि से अलग हो गए। गोंडवानालैंड के टूटने से जो भूभाग जलमग्न हो गए उनमें हिंद महासागर की तलहटी का निर्माण हुआ। प्रवाल परिवार छिछले जल में जन्म लेकर वृद्धि की ओर अग्रसर होने लगा। धीरे धीरे हिंद महासागर के अधिकतर द्वीप चारों ओर प्रवाल भित्ति अथवा प्रवाल वलय से घिर गए। जावा से लगभग 800 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम काकस किलिंग द्वीप में डार्विन ने प्रवाल निर्माण का अध्ययन कर प्रवाल भित्ति निर्माण से संबंधित धसाव सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के उत्तर स्थित हिंद महासागर के बहुत से द्वीप या तो प्रवाल वलय हैं या जलमग्न पर्वतों की जल से बाहर स्थित चोटियां, जो अब चारों ओर से प्रवाल भित्ति से घिर गई हैं। अफ्रीका के पूर्वी तट के पेम्बा व उनगुजा सेसेल्स के 30 बड़े व बहुत से छोटे छोटे द्वीप मॉरिशस, रोड्रिगेज, अंडमान तथा मरगुई द्वीप श्रृंखला, ये सभी द्वीप भयानक प्रवाल भित्तियों से चारों ओर से घिरे हुए हैं। लक्षद्वीप व मालद्वीप प्रवाल वलय के वर्ग से संबंधित हैं। गॉस्केल के अध्ययन में उत्तरी पूर्वी हिंद महासागर की पपड़ी का विशिष्ट महासागरीय पपड़ी के रूप में वर्णन है और यह कई अंतर्राष्ट्रीय खोज यात्राओं से भी प्रमाणित हो चुका है। संरचनात्मक दृष्टि से पृथ्वी पर अति विशिष्ट उत्तर दक्षिण सरल रेखा में विस्तृत 90 डिग्री पूर्वी कटक इस क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करता है। इसे एक विशाल दरारी प्रखंड का क्षेत्र कहा जा सकता है। संपूर्ण प्रदेश अंतः समुद्री पठारों से रहित है। सुंडा गर्त के समीप के क्षेत्र के अतिरिक्त सामुद्रिक टीले भी बहुत कम पाए जाते हैं। महासागर के पूर्वी भाग में पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई भूखंड के समीप पठारों एवं सामुद्रिक उत्थानों का एक त्रिभुजाकार क्षेत्र स्थित है, जिसका नुकीला शीर्ष सेंट पॉल तथा एम्स्टर्डम पठारों की ओर इंगित करता है। एक महाद्वीपीय प्रकार की गुरुत्व असंगति एक्समाउथ पठार पर पाई जाती है। इसकी दक्षिणी सीमा डायामांटिना दरारी प्रखंड द्वारा बनती है। इसके दूसरी ओर दक्षिण भाग में असाधारण प्रकार की स्थलाकृतिक विषमताएं पाई जाती हैं। यहाँ HMAS डायमांटिना अन्वेषक जलयान द्वारा एक गर्त का पता चला है, जिसका नाम डायमांटिना गर्त पड़ा। इस क्षेत्र का थोड़ा पश्चिम में सोवियत जलयान ओब द्वारा इसी प्रवृत्ति की दूसरी दरार ओब गर्त का ज्ञान हुआ। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर समुद्री पपड़ी एकाएक दिखाई पड़ने लगी। हिंद महासागर के लगभग मध्य भाग में 23 डिग्री दक्षिण से 65 डिग्री पूर्व मध्य महासागरीय कटक दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग दक्षिणी पश्चिम मुड़कर अटलांटिक अंटार्कटिक उत्थान से मिल जाता है तथा दूसरा दक्षिण पूर्व मुड़कर एम्स्टर्डम सेंट पॉल द्वीपों से मिलकर ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिक उत्थान से मिल जाता है। दक्षिण में पुनः मध्य भाग में गहरी महासागरी पपड़ी का एक त्रिकोणीय क्षेत्र मिलता है, जिसकी पूर्वी सीमा कर्ग्यूलेन पठार बनाता है। कर्ग्यूलेन द्वीपों की चट्टाने टर्सरी काल के प्रारंभ की हैं तथा स्थलाकृतिक दृष्टि से माइक्रो कॉन्टिनेंट प्रतीत होती हैं। हिंद महासागरीय प्रदेश में भूकंपनीयता दो स्पष्ट पेटियों में केंद्रित हैं, ए मध्य महासागरीय कटकों पर तथा बी भूमध्य सागरीय हिमालय इंडोनेशियाई पर्वतन पेटी से उत्तर तक। प्रथम अरब सागर में मकरान तट एवं गर्त को मिलाते हुए एक छोटा क्षेत्र है जहां भूकंपनीयता ही नहीं वरन भूकंपी सिंधु तरंगे सुनामीज आती रहती हैं। दूसरा, बर्मा के अराकान योमा तट से इंडोनेशियाई द्वीप श्रृंखलाओं से होता हुआ न्यू गिनी के पश्चिम बंडा चाप तक का द्वीपीय चाप है। इस पेटी में केवल भूकंपनीयता एवं भीषण ज्वालामुखी के उद्गार ही नहीं आते, वरन यह क्षेत्र नवीन परिवर्तन क्रिया का क्षेत्र भी प्रतीत होता है, जैसे पंख ज्वालामुखी बर्मा के तट पर फाउल द्वीपों में तथा तिमोर का प्रसिद्ध ज्वालामुखी। तिमोर में नवीन प्रवाल भित्तियां सागर तल से 1,000 मीटर ऊपर तक पहुंच गई हैं, जिनमें क्वार्टरनरी समय से बहुत से भ्रंश पाए जाते हैं। मकरान तट के नवीन अवसाद भी परिवर्तन पेटी की नवीनता के प्रमाण हैं। सीमांत सागरों की संरचना। अंडमान सागर, मरगुई प्लेटफॉर्म, मलय प्रायद्वीप जो अंडमान सागर की पूर्वी सीमा बनाता है, 150 मिलियन वर्ष पूर्व जुरैसिक समय से सागर से ऊपर स्थित है तथा 400 मिलियन वर्ष पूर्व डिवोनियन समय में यह संभवतः उतर आया होगा। मरगुई प्लेटफॉर्म सुंडा मग्नतट का विस्तार है, जिसका समप्रायकरण पेने प्लेनेशन टर्सरीय समय में तथा आप्लावन प्लिस्टोसीन काल में सागर तल में वृद्धि के कारण हुआ। कई मरगुई द्वीप प्रारंभिक मेसोजोइक समय के ग्रेनाइट के मोनाडनाक हैं, जो मलय प्रायद्वीप के बर्मी तट के मरगुई ग्रेनाइट से संबंधित पैलोजोइक काल की परतदार चट्टानों की अपेक्षा अपरदन से लगभग नहीं के बराबर प्रभावित हुई हैं। मरगुई प्लेटफॉर्म पर मानसूनी तूफानों के कारण अवसादों का जमाव नहीं हो पाता। अंडमान निकोबार कटक। अंडमान सागर का उद्भव 60 मिलियन वर्ष पूर्व क्रिटेशियस समय में अंडमान निकोबार कटक के प्रारंभिक उत्थान से हुआ। क्रिटेशियस काल की सर्पेंटाइन तथा गहरे जल की रेडियोलैरियल चर्ट अंडमान निकोबार द्वीप पर पाई जाने वाली सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ये चट्टानों के इस प्रकार के रूप हैं जो द्वीपीय चाप के निर्माण के प्रारंभ में बनती हैं। सर्पेंटाइन तथा चर्ट के ऊपर निम्न टर्सरी काल के प्रारंभ की सागर निर्मित चट्टानों की सर्वत्र बिछी परत से स्पष्ट होता है कि यह कटक सागर से ऊपर 20 मिलियन वर्ष पूर्व आया होगा। निम्न टर्सरी काल की चट्टानों के ऊपर बिछी चट्टानें 1 मिलियन वर्ष पूर्व से शायद थोड़ी पुरानी हो तथा ये प्रवालीय चूने की चट्टानें एवं कवच तथा रेत युक्त हैं, जिनका जमाव छिछले जल में होता है तथा ये प्लिस्टोसीन काल में एक धंसाव तथा उत्थान को प्रकट करती हैं। इस समय ये प्रवाल द्वीपों के किनारे भित्तियां बना रहे हैं। ज्वालामुखी चाप। ज्वालामुखी द्वीप बैरेन एवं नारकोंडम सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित आंतरिक चाप हैं, जिनका दक्षिणवर्ती विस्तार सामुद्रिक टीलों के रूप में है। यहाँ से पायनियर ज्वालामुखी चट्टानें निकाली गई हैं। ये अंत में सुमात्रा ज्वालामुखी से जुड़ जाती हैं। ज्वालामुखी प्रवृत्ति उत्तर में इरावदी डेल्टा के अवसाद के 250 मीटर नीचे तक पाई जाती हैं। वहाँ से मध्य बर्मा स्थित टर्सरी काल के अंत के ज्वालामुखी क्षेत्रों तक चला जाता है। बैनेट द्वीप में अंतिम बार 1852 में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। इसमें अभी भी धुआं एवं लावा निकलता रहता है। इरावदी सालविन डेल्टा, विश्व की दो बड़ी नदियां इरावदी एवं सालविन अंडमान सागर में भारी मात्रा में अवसाद जमा करती है रहती हैं। इरावदी नदी में अवसाद का जमाव 250 मिलियन टन वार्षिक है। सालविन नदी इससे कम अवसाद लाती है। इरावदी डेल्टा का सागर की ओर 5 किलोमीटर प्रति 100 साल की दर से विस्तार हो रहा है एवं मर्तबान की खाड़ी के सागरवर्तीय विस्तार का अनुमान 40 मीटर की गहराई की समुच्च रेखा द्वारा प्रति 100 साल में 55 किलोमीटर लगाया गया है। कुछ प्रमाणों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इरावदी नदी सागर में सालविन नदी से पहले गिरती है। मर्तबान की खाड़ी की तली पर एक द्रुमाकृतिक डेंड्रिटिक धारा का निर्माण उस समय हुआ होगा जब यह क्षेत्र निम्न सागर तल से ऊपर रहा होगा। ऐसी आकृतियां सुंडा मग्न तट पर अन्यत्र भी रही होंगी। यह आश्चर्य की बात है कि खाड़ी में भारी मात्रा में अवसादों के जमाव से धाराओं की प्रणाली ढकी नहीं है। डेल्टा के आधुनिक अवसादों में बालू मिश्रित भूरे रंग का सिल्ट एवं क्ले है। पैनियर द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार डेल्टा की मोटाई 1,000 मीटर से अधिक है।